घूंघट। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगे मरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रिंग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छुपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदनी का गुबार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारियां सी फूट रही हैं। उनके चेहरे पर पाकीजगी और दोशीजगी का नूर था। 80 बरस की इस कंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत, शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियां स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मान करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरा चढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा,
हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को ग्रहण लग जाएगा।
काले मियां उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबतारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहां भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूचरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी, ना के कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाक की हद। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर मगरूर होता है, और काले मियां किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियां वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियां को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियां फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतने को संजीदगी से न लिया, मजाक ही समझते रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियां शमशीरे बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही उस सफेदी में ऐसी घोट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई।
अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो।
दुल्हन और नीचे झुक गई।
हम कहते हैं घूंघट उठाओ,
डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई।
अच्छा जी, इतना गुरूर।
दूल्हा ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाई बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। उस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था, शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियां 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैके के दरमियान मुअल्लक रही। मां को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियां से पूछगछ की गई। वो मगरूर है।
कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना।
अजब गाउदी हो, अमा कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता?
हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है, वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए।
अमा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे आगे भी वो पेशकदमी करे। अजी लाहौल वाला कुवत।
गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हा ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियां ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्खबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियां घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियां ने कह दिया,
अपनी अम्मा की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा।
सब ने गोरी बी को समझाया, देखो बन्नो सारी उम्र का भुगतान है, शर्म हया को रखो ताक में और चिकड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना, इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मिजाजी है, उसकी फरमा बरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी नजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जरदा पका और दूल्हा मियां दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी, अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थीं, सांसें भरी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देख कर गुजारे थे, हमसे इन लड़कियों ने बीसियों रास बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियां के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात मिलकर सुरमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी, बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था।
घूंघट उठाओ,
उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छुंगली भी न हिली।
घूंघट उठाओ,
उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी।
अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा।
दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियां ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाए बाग में कूद गए। उस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियां मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी बी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही, फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लवे दम मरीज के सराहने पहुंची।
घूंघट उठाओ,
काले मियां ने नजा के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियां दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाय पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया।